आरवी कुछ पल खामोश रह गई, फिर शान के बारे में सोचते हुए उसने कड़वाहट से कहा, उनके साथ भी यही किया गया था भैया, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, पर सजा वो भुगतते आ रहे हैं। 7 साल के थे वो सिर्फ, उस उम्र में बच्चे को ठीक से सही गलत में फ़र्क भी नहीं करना आता, और उस उम्र में उनके साथ इतना गलत किया गया जिसने उस बच्चे को उस छोटी सी उम्र में बड़ा बनने पर मजबूर कर दिया, उनसे उनका बचपन छीन लिया। जिस उम्र में बच्चे को ये तक नहीं पता होता कि नफ़रत क्या होती है, उस उम्र में उनके कोमल मन में नफ़रत के बीज बोए गए थे, और इतने सालों में वो नफ़रत कितनी बढ़ गई है इसकी कल्पना भी आप या मैं नहीं कर सकते। उन्हें जो दर्द दिया गया था वही दर्द वो आज लौटा रहे हैं। वो भी बचपन से अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते आ रहे हैं, और अब मुझे आप दोनों से दूर रखकर उसी तड़प का एहसास करवाना चाहते हैं। सालों पहले उनकी नज़र में उनकी माँ को बेइज्जत किया गया था, और उसका बदला उन्होंने भरी महफिल में मेरी इज्जत का तमाशा बना कर लिया। ठाकुर साहब ने डैड को बर्बाद कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की, इतना ही नहीं उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को जिंदा जलाने की कोशिश की, और आज वो इस नफ़रत की आग में उन्हें और उनसे जुड़े हर इंसान को झुलसा रहे हैं। उन्हें बर्बाद करके अपने डैड की बर्बादी का बदला लेना चाहते हैं वो। ठाकुर साहब ने उनकी माँ के साथ मिलकर डैड और उनसे उनका सब कुछ छीना था, और उसी का बदला लेने के लिए वो मेरे हाथों उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि ठाकुर साहब अपनों के हाथों बर्बाद होने के दर्द को महसूस करें जिसे उन्होंने महसूस किया था। आज वो जो भी कर रहे हैं वो सब बीते कल में उनके और उनके परिवार के साथ किया गया था। वो तो बस वही लौटा रहे हैं जो उन्हें दिया गया, और शायद अगर उनकी जगह मैं या आप होते तो हम भी यही करते। आरवी शिद्दत से शान के दर्द को अपने अंदर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरी बेबसी और दर्द छलक रहा था, गला रुंधने लगा था उसका, तो वो कहते कहते चुप हो गई, पर आंखें नहीं रुकी, वो शान के दर्द को महसूस करते हुए बह चली। अर्जुन स्तब्ध सा उसकी बातें सुनता रहा, ऐसी ही बातें उसने शान के मुंह से भी सुनी थी। आज आरवी नहीं, उसके अंदर से शान अपने दर्द को बयां कर रहा था, या आरवी का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि अब शान के वजूद को वो खुद में आत्मसात करने लगी थी। आरवी इस वक्त आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, और अर्जुन उसकी कही बातों से इस कदर दुखी हो गया था कि वो उससे कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सका। एक बार फिर उनके बीच गहरी खामोशी पसर गई, और उस खामोशी को तोड़ते हुए अर्जुन के लबों से बस यही चंद शब्द निकल सके, मुझे पूरी बात जाननी है। आरवी ने अब खुद को संभाला और धीरे धीरे करके सुभाष जी की बताई सभी बातें उसे बताने लगी। जैसे जैसे वो बात बता रही थी अर्जुन के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। आरवी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की अर्जुन एकदम से बोल उठा, ये सच नहीं हो सकता, डैड ऐसा कर ही नहीं सकते। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, वो मुझसे झूठ नहीं कह सकते। और मैंने मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में दर्द देखा है जो झूठा नहीं हो सकता, और डैड भी झूठ नहीं कह सकते। आरवी ने तुरंत ही उसकी बात का विरोध किया। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब वो शान के कैबिन में आराम कर रही थी, और साथ ही उसके साथ बाहर हो रही रिहर्सल को भी देख रही थी। तब माँ के दिए धोखे वाले सीन की रिहर्सल हो रही थी, और उस वक्त उसने शान की आंखों में वो दर्द देखा था जो जब उसको अपने बाप द्वारा अपनी माँ को दिए धोखे का पता चलने पर उसकी आंखों में भी नजर आया था। आरवी के लहजे में कड़वाहट उतर आई थी। अर्जुन उसकी भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए उसने शांत लहजे में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि शान झूठ बोल रहा है या उसकी नफरत बेबुनियाद है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि अंकल ने तुझे झूठी कहानी सुनाई है, पर तूने खुद मुझे बताया ना कि अंकल ने खुद तुझसे कहा था कि आंटी और डैड वो नहीं कर सकते। अगर मैं एक पल को बाकी सब बातें मान भी लूँ कि डैड ने अंकल को झूठे धोखे के इल्ज़ाम लगाकर फंसाया, उनका एक्सीडेंट भी किया, पर आंटी के साथ उनका नाजायज़ रिश्ता, ये बात मैं मरते दम तक नहीं मान सकता। चलो डैड आदमी थे तो मान लेते हैं कि वो बहक गए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डैड आज भी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, और तब भी वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी पहली नज़र का प्यार थी मॉम, और आज भी डैड की आंखों में मुझे उनके लिए वही एहसास नजर आते हैं। फिर भी मान लेते हैं कि वो आदमी थे तो बहक गए होंगे, पर आंटी, आंटी अंकल को धोखा दे ही नहीं सकती, मैं उनके कैरेक्टर पर शक कर ही नहीं सकता। तुम तो छोटी थी, पर मैंने देखा है कि आंटी अंकल से और शान से कितना प्यार करती थी, वो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकती, वो उन्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और डैड तो उन्हें बहन मानते थे, और दुनिया में कोई भी भाई अपनी ही बहन पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। फिर तो खुद देखना, पहले अंकल पर स्क्रिप्ट बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया जिससे डैड और उनके बीच दरार आ गई, उनकी सालों की दोस्ती टूट गई, उसके बाद अंकल और शान के साथ इतना सब हो गया और उसका इल्ज़ाम डैड पर लगा। आंटी और डैड के नाजायज संबंध की बात हमारी मॉम तक पहुंचाई गई, और देखते ही देखते दोनों परिवार बिखर गए।
जो दो परिवार कभी एक दूसरे के बिना अधूरे से थे, अब उनके बीच इतनी दूरी आ चुकी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो इंसान कभी एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे, जिनका एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं बीतता था, आज उन्हें एक दूसरे का चेहरा देखे और बात किए सालों बीत गए हैं और वो दोस्ती तो पता नहीं कहाँ खो गई। अगर अब कुछ बचा है तो दुश्मनी, और प्यार की जगह ली है नफरत ने। अंकल को दिखाया गया कि आंटी उन्हें डैड के साथ मिलकर चीट कर रही हैं, जिससे उनसे उनका प्यार और शान से उसकी माँ का आंचल छिन गया। तो यही झूठ माँ के सामने परोसा गया, जिस पर विश्वास करके उन्होंने तुझे लेकर अपना ही घर छोड़ दिया, और उनके जाने के बाद डैड उनके लिए तड़पते रह गए, मुझसे मेरी माँ और बहन दोनों छिन गए। शान और अंकल तो कुछ बातें जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी आंटी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी, पर डैड तो इतने सालों तक मॉम और तुम्हें ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर जो उस वीडियो में दिखाया गया वो सच होता तो आंटी डैड के साथ होती, पर मैंने इतने सालों में ना तो उन्हें देखा और ना ही डैड के मुंह से उनका जिक्र तक सुना। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, मैं ये भी नहीं बता सकता कि किसने ज्यादा सफर किया, इन सब की वजह से किसको ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी, पर इतना तो तू भी देख सकती है कि दर्द दोनों परिवार को मिला था। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ कोई तीसरा ही है जिसने ये पूरा खेल रचा है, कोई है जिसकी साजिश का शिकार दोनों परिवार हो गए, कोई तो है जो इन दोनों परिवारों को बर्बाद करना चाहता है, कोई तो है जो चाहता है कि दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को खत्म कर दें। अतीत की गहराइयों में अब भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जिससे सब अनजान हैं, और अब हमें उन राजों पर से पर्दा उठाकर हकीकत को सामने लाना है। अभी हमने दो कहानियां सुनी हैं, पर असल में क्या हुआ था अब हमें ये पता लगाना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें आंटी को ढूंढना होगा, क्योंकि वो हमें उस रात का सच बता सकती हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगाना होगा कि ऐसा कौन है जिसकी दोनों परिवारों से इतनी गहरी दुश्मनी है।
तू एक काम कर, मुझे वो वीडियो और आंटी की फोटो सेंड कर, फिर मैं अपने आदमियों को आंटी को ढूंढने के काम में लगाता हूँ, और साथ ही उस वीडियो की असलियत भी सामने लाने का कुछ सोचता हूँ। वहाँ से हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। अभी हमारे पास बस यही दो रास्ते हैं जो हमें सच्चाई के करीब लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो झूठी है तो उससे हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। आरवी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। ऐसी ही कुछ बातें सुभाष जी ने भी कही थी उससे, और तब शक उसे भी हुआ था, पर फिर शान का दर्द देखकर उसने उन बातों पर विश्वास कर लिया था। पर अब एक बार फिर उसका दिमाग उल्टी दिशा में दौड़ने लगा था। काफी देर तक सब बातों के बारे में सोचने के बाद आरवी ने हामी भर दी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने फोन काट दिया, और फिर आरवी रश्मि के साथ ऑडिटोरियम के लिए निकल गई। वहां आगे के सीन की रिहर्सल होने लगी थी। आरवी कुछ पल वहां बैठी अपनी ही सोच में गुम रही, फिर वहां से उठकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त तूफान मचा हुआ था। क्या सच है और क्या झूठ? अगर ये बातें किसी का फैलाया भ्रमजाल है तो सच क्या है, और उसे कैसे सामने लाया जाएगा? ऐसे बहुत से सवालों से जूझ रही थी वो, और इन सब में जो बात उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी शान के मन से नफरत मिटाना, जो लगभग नामुमकिन था। आरवी कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर शान को एक मैसेज सेंड करके ड्राइवर के साथ घर चली गई। लंच के बाद अर्पिता जी अपने रूम में आराम कर रही थी, और अंशु भी उनके साथ सो रही थी। घर के नौकरों का भी ये आराम करने का वक्त था, तो घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए हिम्मत बटोरी और सुभाष जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। आदतन वो अपने रूम में बैठे नॉवल पढ़ रहे थे, तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक हो गया। उन्होंने सर घुमाकर देखा तो आरवी को वहां देखकर कुछ हैरानी से बोले, बेटा आप इस वक्त यहाँ? अभी तो आपको थिएटर में होना चाहिए था ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आरवी ने फीके से मुस्कुराते हुए कहा, डैड मेरा वहां मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं घर आ गई। क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? सुभाष जी इसकी आवाज़ में झलकती उदासी और परेशानी को भांप गए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बेटी को अपने बाप के पास बैठने के लिए उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आइए हमारे पास आइए, बहुत दिन हो गए हमें भी ऐसे आपके साथ बैठकर बातें किए। आज हम अपना थोड़ा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताएंगे। उनकी बात सुनकर आरवी के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा था, देखें तो बस ससुर और बहू का रिश्ता था उनके बीच, पर आरवी के लिए वो उसके पिता, तो सुभाष जी उसे पहले दिन से अपनी बेटी मानते थे।